नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम फिफ्थ कॉलम की बात करने जा रहे हैं। और फिफ्थ कॉलम में ऑफकोर्स आजकल केजरीवाल जी टॉप पर है, लेकिन फिफ्थ कॉलम अकेले वो ही नहीं है, बहुत सारे और भी फिफ्थ कॉलम हैं। जी हाँ, कुछ फिफ्थ कॉलम तो हमारे जयपुर डायलॉग्स में ही पेनिट्रेट होके बताते हैं, तो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा हम अपने जो है वो चूजे हैं ना, जो हमारे बगल में जो थोड़ा बहुत चू 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 करते रहते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और सुमित पीर जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका सुमित जी।
संजय सर नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, असीम शुभकामनाएं। और दर्शकों से अनुरोध है कि जिनको भी प्रश्न पूछने हो वो कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से या सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जी सुमित जी, फिफ्थ कॉलम कैसा चल रहा है?
सर सबसे पहले तो फिफ्थ कॉलम, ये कहते हैं ये जो साल है ये शनि का साल है, और फिफ्थ कॉलम के पूरे में शनि बैठ गया है। फिफ्थ कॉलम वाले बहुत हिल गए हैं, और जब से कल से जैसे जो कल से होली का दहन हुआ था, हम अपनी बुराई या अपनी सारी खराब बातें और अब सब ना बैड लक जो होता है उसमें जलाते हैं। मुझे लगता है काफी सारे लोगों के जो दबे हुए स्केल्टन थे, जो कहते हैं ना स्केल्टन इन द कबर्ड, वो निकलने शुरू हो गए। काफी लोगों की काफी पोल पट्टियां निकल गई। आज लोग होली मना रहे थे और कुछ लोग की का माता मर रहा था आज। अब जैसे शुरुआत करते हैं हमारे सर जी से। अब सर जी तो कल जेल में थे, सर जी वहां जेल से अपने आदेश वादेश निकाल रहे थे, कहते थे हम दिल्ली चलाएंगे। आज कल आची जी कह रही थी मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, वो जेल में बैठे, उन्हें अपनी अपनी उन्हें कोई चिंता नहीं, वो दिल्ली के कार्यों में बड़े व्यस्त हैं। बिजली ठीक चले, सीवर ठीक चले, सब ठीक चले। कल बहुत अच्छा उन्होंने वो चला कि हम देश
वहां पूरा खाली टाइम था ना, इसलिए याद आ रही थी उनको सीवर्स की और पानी की।
की
जब तक बाहर थे तब तक याद नहीं आती थी, तब तक केवल
और
पॉलिटिक्स करते थे।
हम चलाएंगे जी जेल से सीएमओ। तो मैंने पूछा था, मैंने कहा यार जेल में बिजली पानी इंटरनेट वाईफाई वाईफाई तो लगवा लो। मैंने तो सुना था जेल से गैंग चलती है और गैंग गैंग सरगना चलाते हैं। ये सीएमओ जेल से कब चलने लगा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जेल से कब चलने लगा, मुझे समझ नहीं आई। और अगर चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जेल में ही चलाना तो इतनी बड़ी बिल्डिंग की क्या आवश्यकता थी। और वैसे काफी सारे विधायक तो आजकल आपके जेल में ही हैं। एक बार वो ये जो है ना, ये जेल के सुपरिंटेंडेंट साहब तिहार के, वो कह रहे थे यार मैं दावा ठोक रहा हूँ चीफ मिनिस्टर बनने का। तो लोगों ने पूछा क्यों भैया, कहता सबसे ज्यादा एमएलए तो मेरे पास ही रखे हैं तो कहता मैं ही बनूंगा चीफ मिनिस्टर। तो ये तो परिस्थिति है सर। अब ये सब प्रकरण चल रहा था तो लोग थोड़े भावुक हो रहे थे पहले। बाय द वे एक बात बता दूं संजय सर, इन्होंने कहा था अगर केजरीवाल को हाथ लगाओगे तो लाखों लोग सड़क पे आएंगे, दिल्ली में ये हो जाएगा, दिल्ली में वो हो जाएगा, दिल्ली रुक जाएगी, दिल्ली का बच्चा बच्चा सड़क पे आएगा और केजरीवाल के लिए लड़ेगा। पर मैंने 3 दिन से किसी को नहीं देखा, कोई सड़क पे नहीं आया, कोई नहीं लड़ रहा। यहां तक तो संजय सर कार्यकर्ता भी नहीं आ रहा जेल पे, वो सड़क पे, वो भी कह रहा ठीक है सर जी जेल गए अच्छे जान छूटी। अब आप देखिए आज सुबह एक वीडियो आता है, आज सुबह वीडियो आता पन्नू का। 3-4-5 चीजें उस वीडियो में जो हमें समझनी पड़ेगी। पहले पन्नू ने एक वीडियो निकाला, कहता भाई 2014 में केजरीवाल मुझसे मिला था यहाँ यूएसए में न्यूयॉर्क में आके, कहता भाई हमारी सहायता करो और हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। कहते मैंने बोला कि तेरे पे भरोसा कैसे करे, कह आप मेरे पे भरोसा करो, आप मेरे साथ फोटो खिंचाओ। उसने वो फोटो है वोटो है वीडियो में लगाई है, तो मीटिंग हुई है फोटो बाकायदा वीडियो में लगाई। कहता भाई मैंने आप मैं कह रहा मैंने पहली कंडीशन थी बुल्लर को जैसे ही मेरे मंत्र जैसे मेरी वो बॉडी कॉल जैसे ही मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा जैसे मेरी सरकार आएगी 5 घंटे में छुड़ाऊंगे। बुल्लर को ने 1993 बम ब्लास्ट का अक्यूज है जिसमें 9 लोग मरे थे, इसने बम फोड़ने का काम किया था, प्रोफेसर बुल्लर है ये। अब पहली शर्त तो ये थी। फिर दूसरी शर्त थी, कहता भाई और पैसे कितने मिले। पैसे मिले सर वो कह रहा है $16.6 मिलियन, यानी कि मोटा मोटा 130 करोड़ रुपया, 130 करोड़ रुपया उसने उन 2014 से लेके 22 तक केजरीवाल जी को दिया है। अब वो पूछ रहा सवाल, कह रहा मैंने आपको 130 करोड़ रुपया दिया श्रीमान केजरीवाल जी, बुल्लर क्यों नहीं छूटा, 9 साल हो गए। ये कौन, पन्नू कह रहा है। दूसरा कह रहा भाई अमृतपाल डिब्रूगढ़ की जेल में क्यों है, उसे बाहर होना चाहिए, तुम्हारे होते हुए कैसे हुआ, जवाब दो। तीसरी बात करी, तुमने खालिस्तानी टेररिस्टों का एनकाउंटर करने की हिम्मत कैसे की, यहाँ पाकिस्तान मेरे मुंह से निकल रहा था पंजाब में, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि पन्नू बताएगा कि किसका एनकाउंटर करे किसका ना करे। चौथा कह रहा भाई जो लोग खालिस्तानी रेफरेंडम में शामिल होना चाहते उन पे कानूनी कार्रवाई कैसे हो रही है पंजाब में, तो तुम्हें पैसे देने का फायदा क्या हो, तुमने धोखा दिया, भगवंत मान जी ने धोखा दिया, तुम सबने धोखा दिया, तुम भारत के एजेंट हो, सब सिखों को भाई खालिस्तान के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो सब तो अलग बात है। ये चार एलिगेशन लगाता है, कहता है 130 करोड़ रुपए मैंने तुम्हें दिए, तुमने ये काम किए, तुमने क्यों नहीं किया। अब आप बोलेंगे यार देखो ये तो आतंकवादी है पन्नू, मैं भी मानता हूँ आतंकवादी है। अब आप बोलोगे यार आतंकवादी कुछ भी कहे उससे क्या फर्क पड़ता, मैं भी कहता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, पर स्टोरी में ट्विस्ट है। स्टोरी में ट्विस्ट है जिस बुल्लर की यहाँ बात हो रही है, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनते तो सर जी ने एक लेटर लिखी थी इकबाल सिंह जी को। इकबाल सिंह जी वो व्यक्ति है जो अनशन पे बैठे थे, वो जो अनशन पे बैठे हुए इकबाल सिंह थे, उन्हें चिट्ठी लिखी कि हमें पता लगा जी आप अनशन पे बैठे हैं, हम आपके कॉज से बिल्कुल सिंपैथेटिक हैं और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। लास्ट पैराग्राफ लिखता है कि दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दरख्वास्त की है कि बुल्लर को छोड़ा जाए। वही बुल्लर है जिसकी बात पन्नू कर रहा है, जिसके पैसे मिले थे कि भाई उसको छोड़ा जाए, हम एक एसआईटी का गठन करेंगे ऐसे सब केसों को देखने के लिए, सिंपैथेटिकली इन अ टाइम बाउंड मैनर में इनका निपटारा करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट ये है, श्रीमान केजरीवाल जी ने नीचे साइन भी किया, यूजुअली सर जी कहीं साइन नहीं करते पर इस लेटर पे साइन भी किया। अब ये वीडियो और अगर आप ये लेटर देखें, ये लेटर लिखा है बुल्लर के बारे में चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने, ये है वीडियो पन्नू का, ये बुल्लर की बात कर रहा है, 130 करोड़ की बात कर रहा है, इन सब चीजों का उसने वीडियो लगाया, फोटो लगाया। अब सवाल ये आता है कि क्या जो एलिगेशंस लगती थी, जो लोग बातें करते थे कि भाई आम आदमी पार्टी में खालिस्तानी फंडिंग है, क्या वो सच है? अगर ये पन्नू कह रहा और अगर ये चिट्ठी सामने आती हो, अगर सर जी ने ये चिट्ठी लिखी है तो कुछ तो सच लग रहा है। तो क्या ये केस नहीं बनता संजय सर, इसमें एनआईए की जांच की जाए? 130 करोड़ का पैसा आया है पाकिस्तान का, आईएसआई का, दिल्ली गवर्नमेंट में, ऐसा पन्नू कह रहा है। अगर 130 करोड़ रुपया आया है, अगर ये एलिगेशन सच है तो इसमें एनआईए की जांच होनी चाहिए। अगर एनआईए की जांच में कुछ आता है तो
मैंने आज दिन में जो वीडियो बनाया था सोलो, उसमें मैंने ये डिमांड किया
होनी चाहिए। और इनके ऊपर बताइए अगर प्राइमा फेशिया एविडेंस मिलता है तो यूएपीए और एनएसए क्यों ना लगाया जाए? क्यों? क्योंकि ये मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है, इस पे नहीं लगेगा। तो ये अगर ऐसा मुख्यमंत्री करेंगे तो आम आदमी पे कैसे लगाएंगे आप? तो अभी तो मेरी बहुत बड़ा निवेदन है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, सर इसकी जांच कराए। 130 करोड़ रुपए कह रहा पन्नू, आतंकवादी पन्नू, इंटरनेशनल टेररिस्ट पन्नू, आईएसआई का एजेंट पन्नू, वो कह रहा मैंने आपके मुख्यमंत्री को 130 करोड़ रुपए और मेरे मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा तू ये सब क्यों नहीं कर रहा। अगर ये सच है तो क्या हम ये माने कि दिल्ली की कैबिनेट में खालिस्तानियों ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया था, तो हम क्या माने कि आम आदमी की सरकार खालिस्तानियों के पैसों पर चल रही थी? क्या हम माने कि खालिस्तानियों की इतनी औकात कि हमारे मुख्यमंत्री को बोले ये कर ये कर ये कर, और वो तो भगवंत मान जी पे भी कह रहे हैं भाई भगवंत मान जी तुमने ये नहीं किया तुमने ये नहीं किया। सर क्या हो रहा है देश में? मतलब इतना बड़ी त्रासदी हो रही, इतना बड़ा लफड़ा हो रहा है, पूरा पूरा वो लग रहा है, ये पूरे पूरे आरोप लग रहे हैं और ये चिट्ठियां निकल रही है। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 1993 में जो टाडा कोर्ट से कन्विक्ट हुआ था बुल्लर, जिसके बनाए हुए बम से 9 हिंदुस्तानी मरे थे, उस बुल्लर से श्रीमान केजरीवाल जी को क्या सिंपैथी है? क्या लेना देना इनको आतंकवादी? एक आतंकवादी जेल में है, निकलता नहीं निकलता, उस आतंकवादी, उस विशेष आतंकवादी के लिए केजरीवाल जी क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखते हैं और उसी आतंकवादी की बात अब पन्नू कर रहा है? तो मतलब यहां हो क्या रहा है? आतंकवादी खालिस्तान, पाकिस्तान, आईएसआई, आईएसआई का पैसा, K2 डेस्क, ये तो सारा मिली जुली खिचड़ी लग रही है। और ऐसे में राघव चड्ढा जी लंदन में है, वो मिल रहे किसी एक यूके की एमपी से जो नॉन एंटी इंडिया वॉइस है। क्या राघव चड्ढा जी ने एमईए से वो लिया, परमिशन लिया? मुझे नहीं लगता परमिशन लिया। अगर परमिशन नहीं लिया तो वहां वो कैसे मिल रहे हैं? वो तो कह रहे थे मैं आपका ऑपरेशन कराने गया। और सवाल मैं ये पूछूंगा, भारत जो नंबर वन है अभी मेडिकल टूरिज्म के लिए, यहाँ फोर्टिस है, मैक्स है, दुनिया का हर तरह का अस्पताल है, सबसे सस्ती और बेस्ट सुविधा। और हाँ, भारत में मोहल्ला क्लिनिक है, अगर आप भूल गए संजय सर, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक भी भारत में है। तो भारत का एमपी क्या लंदन जाएगा अपनी आंख का इलाज कराने? लंदन ही क्यों गया? अमेरिका क्यों नहीं गया? फ्रांस क्यों नहीं गया?
क्या है कि मोहल्ला क्लिनिक में आंखों का इलाज नहीं होता है, वहां केवल दिल और दिमाग का इलाज होता है।
मुझे पता था आप जरूर ऐसा कुछ कहोगे। सर ये
और एक बात और आपने जो बोली उसमें ये और भी बता दे, दिल और दिमाग के इलाज के साथ आपने जो कहा ना कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, तो ईडी कह रही है कि यार हमने इनको स्टेशनरी नहीं दी, हमने इनको प्रिंटर नहीं दिया, हमने इनको कंप्यूटर नहीं दिया, टाइपराइटर तो फेज आउट हुए कोई 20-30 साल हो गए, तो ये जो है ये चिट्ठी आई कहाँ से, कौन लाया, किसने किया, क्या किया? तो इसलिए उन्होंने एक नई जांच शुरू कर दी है और अब वो आतिशी मार लेना उससे पूछताछ करेंगे।
दो पॉइंट है सर यहाँ पे। सबसे पहली बात है, पहले अगर आप जुडिशियल कस्टडी में, आप खुद गवर्नमेंट अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, मैंने सुना था अगर गवर्नमेंट अफसर 24 घंटे 48 घंटे हिरासत में रहे, उसको
48 घंटे
उसको सस्पेंड या टर्मिनेट किया जाता, ऐसे मैंने सुना था, क्योंकि मैंने तो कभी गवर्नमेंट की नौकरी की नहीं, मुझे नहीं पता। तो अगर ये बताइए, अगर एक आईएएस ऑफिसर कोई अगर हिरासत में चला गया, अगर 48 घंटे में उसको सस्पेंड या टर्मिनेट किया जाएगा, तो ये मुख्यमंत्री को क्यों नहीं, ये क्यों ये दोहरा मापदंड क्यों है भाई? वो क्योंकि आप सरकार हो, इसलिए आपको कोई टर्मिनेट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ईडी की कस्टडी में, उन्हें किसने अधिकृत किया ये चिट्ठियां लिखने का? ये तो उनको प्रोविजन ही नहीं है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये तो ब्रीच ऑफ कंडक्ट है, इस पे जांच नहीं होनी।
तो मैंने आज पूछा था ना, मैंने कहा देखो भाई सिस्टम होता है, सरकार का एक सिस्टम होता है, और मेरे दिन वाले वीडियो में ये सवाल पूछे गए हैं।
बिल्कुल सर,
एक कोई भी जो है सरकारी नोट जो चलेगा उसके ऊपर एक डिस्पैच नंबर लगेगा, और वो डिस्पैच नंबर जो है वो डिस्पैच होगा, डिस्पैच रजिस्टर होता है। तो भाई जो ईडी का एक डिस्पैच रजिस्टर होगा, उस डिस्पैच रजिस्टर से वो डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ? अगर उस ईडी के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं हुआ तो वो तो वैसे ही लीगल नहीं हुआ, एक बात। और दूसरी बात, हम ये पूछते हैं कि भाई उस पे तो जो मैंने देखा चिट्ठी देखी, तो उस पे तो कोई दस्तखत भी नहीं थे, या कोई इनविजिबल इंक से हमारी मार लेना दीदी ने कर लिए हो तो पता नहीं, तो
मिस्टर इंडिया वाली इंक, मिस्टर इंडिया वाली इंक।
हाँ, तो भी पता नहीं कैसे हुआ, उनके पास तो वाईफाई भी नहीं, जैसा आपने कहा इंटरनेट और वाईफाई भी सुविधा नहीं उनको उपलब्ध कराई गई, कैसे हुआ?
और अगर संजय सर ये हुआ तो ये तो खुद भी एक मुकदमा बनता है, तो आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कंडक्ट का मुकदमा आप पे चलना चाहिए। और फिर जो उनसे मिलने आए तो वो इस साजिश में संलग्न है। और आची जी पे एक और
वो चीज़, तो सुनीता जी आई थी मिलने,
तो जो भी मिलने आया था वो तो फिर इसमें संलग्न है, क्योंकि यू आर डूइंग, यू आर हेल्पिंग।
आप कहने का अर्थ ये है कि दोनों वुड बी चीफ मिनिस्टर जो है, इनके इनको रिजाइन करना पड़े या इनको सुप्रीम कोर्ट या कोई और हटा दे, तो जो दोनों जो चीफ मिनिस्टर्स वुड बी हैं, यानी सुनीता जी और आतिशी जी, सुना उनमें झगड़ा भी चल रहा है, और जैसे सौतिया डाह बोलते ना, जानते सौतिया डाह? तो वो जो सौतनों का जो झगड़ा चल रहा है उसमें ये दोनों सौतने चली जाएंगी अंदर, फिर क्या होगा?
सर मैंने एक और चीज सुनी, मैं आपको बता दूं, एक आम आदमी के ये नेता है, एक बहुत युवा प्रतिभाशाली नेता है, नाम नहीं लूंगा, और सुनने में आया है कि उनके रिश्तेदारों के कोई टीवी चैनल है और उस टीवी चैनल का सीएफओ ऑलरेडी लिकर स्कैम में अंदर है। तो अब ये वक्त की बात है कि ईडी उस चैनल के मालिक मालकिन और ये जो आम आदमी पार्टी का नेता है इस तक पहुंचेगी। तो अभी तो और लोग अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि इनका भी सीधा सीधा रिलेशन लिकर स्कैम से। और अब केसों की फेरिस्त सुनिए, लिकर स्कैम तो है ही, फिर जेल बोर्ड वाला है आपका, फिर मोहल्ला क्लिनिक वाला है, फिर आपका स्कूल वाला है, फिर आपका समन जम करने वाला, और स्नूपिंग, जो स्नूपिंग वाला मामला था उसमें भी तो एविडेंस मिली,
वो भी सीबीआई के पास है,
सीबीआई के पास है।
अभी सीबीआई तो एक्शन में आई नहीं, अभी तो केवल ईडी चल रहा है,
पहले एक केस में, फिर
अभी एनआईए भी आने वाली है।
एनआईए को तो लाना पड़ेगा सर, पन्नू कह रहे 130 करोड़ रुपए दिए हैं, 130 करोड़ रुपए दिए पन्नू ने, ये तो पन्नू कह रहा है, और जो चिट्ठी सामने आई है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। अब फिर एनआईए के बाद आप ये देखिए, एक तो ये हो गया, फिर ये वाला आपका समन जम करने वाला, ये स्नूपिंग वाला केस, और अब एक और केस है जो ईडी में, ये जो कागजों की आधानी प्रधानी हो रही थी, तो क्या एक चीफ मिनिस्टर ईडी की कस्टडी में कोई सरकारी ऑर्डर लिख सकता है? मेरे हिसाब से तो वो प्रोविजन है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये इन्होंने ऑर्डर कैसे लिख लिया? अगर ऑर्डर मिला तो बाहर कैसे गया तो वो माननीय कैसे हुआ? इसीलिए केजरीवाल जी कल कह रहे थे मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। मुझे लगता केजरीवाल जी को पता लग गया यहाँ जल्दी वल्दी कुछ नहीं, सिसोदिया को तो एक साल हो गया, बेचारे तब से परेशान है, और क्योंकि वो केवल साइन करते थे, और यहाँ दो पेज आए हैं सर। पहला पेज ये है कि सिसोदिया के पीए ने काफी कुछ बोल दिया है, उसे बोला मुझे बुलाया था जी, तब ये हो रहा था, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा। या कविता जी ने बोला है, कविता बहन जी जो है बीआरएस वाली, उन्होंने कहा जी मैं तो, हमने तो 100 करोड़ रुपए दिए थे इनको। तीसरी बात, मनीष सिसोदिया ने कल परसों ये भी सुनने में आया था, बोला भैया मैंने खुद कुछ अप्रूव नहीं किया, मैंने किसी के कहने पे किया। क्या उन्होंने सर जी का नाम तो नहीं ले लिया कि सर जी ने बोला मैंने अप्रूव किया? और अगर आप सब इस प्रकरण में जाए तो ये सर जी की बड़ी अच्छी आदत है साइन नहीं करते, पर ये जो चिट्ठी है ना बुल्लर वाली, इस पे सर जी ने साइन भी कर रखा है। तो अगर आप सारे प्रकरणों को डालें, सारी चीजों को जोड़े, तो पहले ईडी, फिर सीबीआई, फिर एनआईए, फिर एक केस में ईडी, फिर उसी केस में सीबीआई, फिर उसी केस में एनआईए। ये तो लंबी चलने वाली प्रक्रिया है सर। और अगर आप 8-8 सामने जंप करोगे तो आपको बेल मिलना तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा ना, तो कौन जज आपको बेल देगा 8 सामने जॉइन करने के बाद? और यहाँ पन्नू ने तो आपकी है, मतलब वाट लगा दी लिटरली, वो तो कह रहा है 130 करोड़ रुपए दिए मैंने। तो ये सारा प्रकरण सर जी का तो बहुत साल भारी है। काफी काफी लोग का ये मत था कि सर जी खुद ही सरेंडर करने चले जाते, सर जी ने किया नहीं, अभी ईडी आके ले गई। और कल सुनीता जी ये भी कह रही थी जब अरविंद जी बाहर आएंगे तब 1000 रुपए मिलेंगे। मैं कहा ये लो जी 1000 रुपए की गारंटी दी थी, वो भी आप गोल कर गए। कह रहे 1000 रुपए भी तब मिलेंगे जब सर जी बाहर आएंगे। तो और आज आपको एक और चीज बताऊं, आज आम आदमी का एक नेता पता क्या कह रहा है, कह रहा भैया रावण को ये पता था उनका अंत राम से होना है, ठीक है जी, कंस को यह पता था उनका अंत श्री कृष्ण से होना है, और मोदी को यह पता है कि उनका अंत केजरीवाल से होना है। सर ये क्या बात है, आप माननीय प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे रहे हो? मतलब रावण और कंस से कंपैरिजन करके जिनका एंड था मृत्यु, जिनका एंड था डेथ, तो आप क्या कह रहे हो कि आप माननीय प्रधानमंत्री को सीधे सीधे यू आर थ्रेटनिंग हिम विद डेथ? मतलब ये क्या मतलब है कि मोदी का अंत केजरीवाल से होगा? भाई आप बोलिए केजरीवाल जीतेंगे, केजरीवाल एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, वो पॉलिटिक्स में तो हार जीत होती है ना, यह अंत नहीं होता ना किसी का। मतलब क्या मतलब है आपके मोदी के अंत का? प्रधानमंत्री के अंत की बात करो, सीधी सीधी धमकी दे रहे हो आप, पब्लिकली धमकी दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? और अच्छी जी आप भी ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रहोगे, ये मेरा मानना है। और राघव चड्ढा भैया तो भाग गए लंदन, अब लंदन क्यों भागे, लंदन क्यों भागे संजय सर? लंदन इसलिए भागे क्योंकि आप जानते हैं संजय सर, लंदन से किसी को एक्सट्राडाइट नहीं किया जाता। लंदन में 3 चीजें होती है, लंदन में आई थिंक 92 में हमने ट्रीटी साइन की थी, तब तक एक पटेल नाम के व्यक्ति को हमने एक्सट्राडाइट किया, कोई नहीं कर पाता लंदन से किसी को एक्सट्राडाइट, क्योंकि वह 3-4 कानून है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, अगर लंदन के जज को ये लगे, इफ ही प्रिज्यूम्स कि तुम्हारे साथ 3rd degree होगा, डेथ पेनल्टी होगी, वो तुम्हें एक्सट्राडाइट नहीं करता। दूसरी बात, लंदन बिकॉज दे आर सिग्नेटरी ऑफ यूनाइटेड यूरोप ह्यूमन राइट कन्वेंशन, पहला पार्ट, तो अगर उसको ये एज्यूम या प्रिज्यूम होता तो आपको एक्सट्राडाइट नहीं करते। दूसरी बात, लंदन में बहुत सी ऐसी एजेंसी है यूके में जहां वकील जो जैसे इंडियन ऑरिजिन का ब्रिटिश वकील होगा तो उन्हें पता है इंडियन लॉ कहाँ खत्म होता है, ब्रिटिश लॉ कहाँ शुरू होता है, नो मैंस लैंड में अपने बंदे को सेट कर देते हैं। तीसरी बात, लंदन का सारा पैसा जो बैंकों में लगभग $1 trillion मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे लोग का पैसा, इसलिए दुनिया के सारे अलीबाबा लंदन ही पहुंचते और कहीं नहीं जाते, अमेरिका नहीं जाते, फ्रांस नहीं जाते, मिलान नहीं जाते, सारे के सारे लंदन पहुंचते। और चौथी बात, लंदन का जो FCRA एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है, पिछले 18 सालों में अब उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई कार्रवाई नहीं की है। लोगों के जूते घिस गए, हर कंट्री के जूते घिस गए, एक बंदे को भी आपको उनको अपील करनी होती जी इसने ये फाइनेंशियल रेगुलेटरी की है, 18 साल में एक बंदे के खिलाफ भी उन्होंने रूलिंग नहीं दी है। क्योंकि जो आदमी ब्रीफकेस पहुंच के, बड़े बड़े नोटों की बोरियां पहुंच के लंदन पहुंचता, लंदन का कॉन्स्टिट्यूशन, लंदन की न्याय प्रणाली उसको पूरा पूरा संरक्षण देती है। इसने नीरव मोदी की बात करे, ये नीरव मोदी था, ललित मोदी था, विजय माल्या था, और अब शायद श्रीमान राघव चड्ढा जी भी सारे लंदन ही जाते हैं। जब ये लंदन आंख का ऑपरेशन करने गए तो मैंने कहा भाई दाल में काला है, ये लंदन ही क्यों गए? अगर आंख का ऑपरेशन करना सिंगापुर में बड़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, सिंगापुर चले जाते, ये रहा। वाई लंदन? अमेरिका चले जाते, भाई अमेरिका में एक से एक बड़ी फैसिलिटी है, फ्रांस में अच्छी फैसिलिटीज है, नीदरलैंड में अच्छी फैसिलिटीज है, वाई लंदन? और लंदन में देखिए क्या काम कर रहे हैं। तो मतलब ये सारी प्रक्रिया मिली है, मुझे लगता चड्ढा जी को लगा, और चड्ढा जी कब निकले? चड्ढा जी निकले अगले दिन, जिस दिन जल बोर्ड का नोटिस आया ना, आपको याद होगा संजय सर, उनको केजरीवाल को नोटिस मिला था जल बोर्ड के लिए भी ईडी का, भाई जल बोर्ड कोटा। उसके अगले दिन पता लगा राघव भैया सीधा निकल गए लंदन। उन्होंने कहा इससे पहले ईडी वाले मेरे घर तक पहुंचे मैं बैठ जाऊँ लंदन में, लंदन तो नहीं आएंगे ईडी वाले। ये प्रक्रिया है, ये हालत है। और अभी लंदन की गवर्नमेंट ने कितने,
अरे आजकल कुछ पता नहीं है, ऋषि भैया जो है वो ईडी को वहां भी अलाउ कर दे।
हाँ कर सकते हैं, पर अभी पहले हमारे जो पुराने केस है वो तो निपटाए। उन्हें लगा ना सेफेस्ट जगह है, सेफेस्ट जगह लंदन, यहाँ टाइम मिलता सब कुछ मिलता, यहाँ देखते आगे प्रावधान क्या होगा। आपको याद होगा ऋषि सुनाक ने पीछे 100-200 खालिस्तानियों के अकाउंट भी सीज किए थे लंदन में, अकाउंट भी सीज होने लगे। अब आप बोलेंगे ये पन्नू को आज क्या बुखार चढ़ गया, ये वीडियो क्यों बना रहा है? संजय सर पन्नू इसलिए वीडियो बना रहा है क्योंकि उसके जो बाप है ना उसके मालिक लोग कहते बेटा पैसे कहाँ गए, तो उसने वीडियो बना के बोल दिया देखो सर मैंने इनको 130 करोड़ दिए, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, सर इनकी गवर्नमेंट डूब गई, ये खुद जेल में चले गए, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो खुद इनसे पूछ रहा हूँ तुमने 130 करोड़ लिए इसका रिटर्न क्या है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। पन्नू अपने हाथ झाड़ रहा कि पास्ट ऑन द मनी टू दीज पीपल हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। पर आप देखिए भारत के इतिहास में ऐसी कोई चीज हुई आज तक, इतनी कोई भयंकर घटना घटी है? आप देखिए कि एक चीफ मिनिस्टर पे ऐसे आरोप लगे हो, खालिस्तान की फंडिंग की, फॉरेन फंडिंग की, टेररिस्ट फंडिंग के आरोप लगे हो चीफ मिनिस्टर पे, ये आरोप बहुत संगीन है सर। मुझे लगता है जितने आरोप आज तक लगे वो एक तरफ, ये आरोप सबसे बड़ा है। मतलब आज लिटरली क्या हम कह सकते हैं कि खालिस्तानी सर इन्फिल्ट्रेटेड अवर दिल्ली गवर्नमेंट? हम जैसे कनाडा में कहते हैं भाई खालिस्तानी सर इन्फिल्ट्रेटेड योर कैनेडियन गवर्नमेंट, आज तो वो पलट पोल के बोलेंगे नो वी हैव नॉट ओनली इन्फिल्ट्रेटेड कैनेडियन गवर्नमेंट वी हैव आल्सो इन्फिल्ट्रेटेड योर दिल्ली गवर्नमेंट। अगर ये चीजें हो रही है तो बताइए कितने देश के लिए खतरे की बात है और कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और ये कहते थे मोदी जी को चौथी फेल बादशाह, भैया अगर तुम पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हो, अगर तुम्हारा ये मानना है कि केवल जो IITian है वही पढ़ा लिखा, तब तो मैं भी चौथी फेल हूँ। मुझे लगता नहीं संजय सर आपने भी IIT से पास किया है, तो हम और जो हमारे दर्शक है 99.9% IITian नहीं है, हम तो सारे चौथी फेल है। वैसे मोदी जी के पास मास्टर्स डिग्री है पर उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, अगर IITian नहीं है तो सब चौथी फेल है, भैया हम भी चौथी फेल है। अगर आप पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करोगे, हजारों करोड़ का घोटाला, और आप पढ़े लिखे पन्नू जैसे लोगों से पैसे लोगे और उनके साथ साठ गांठ करोगे, आप पे आज पन्नू ओपन मीडिया में सवाल उठाता भाई हम चौथी फेल, हमारा जो बादशाह बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, हमें गर्व है उनपे, वी आर हैप्पी विद हिम, हमें आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए कहां गया आज वो केजरीवाल। और आपको एक और बात बता दूं, ये 45 करोड़ का शीश महल, 12 करोड़ का कॉर्पोरेट, 4 करोड़ वो लाखों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए का किचन, 5-5 लाख रुपए की कमोड, उस पर बैठने वाला व्यक्ति पर जब बाहर आते हैं ओवरसाइज बूशर्ट, 5 रुपए रेनॉल्ड का पेन, नीचे वो फ्लोटर चप्पल और ट्राउजर, और घूमते करोड़ों की गाड़ियों में, 8 करोड़ रुपए का ऑफिस है, और ये है आम आदमी। मतलब वहां इतनी जगह पे शीश महल बनाया, इतना पैसा लगाया उसमें, पर बाहर उसी इमेज में घूमते। अब देखिए असलियत, रियलिटी और रियलिज्म में कितना फर्क है। रियलिटी है हजारों करोड़ का स्कैम, रियलिटी है पन्नू से लिए पैसे, रियलिटी है ये 8 केस जो मैंने आपको गिनाए हैं, और दिखाने में क्या है, दिखाने को कि जी हम तो बहुत ईमानदार है, वही ब्लू कलर की बुशर्ट लगा के घूमेंगे, वो तो शुक्र करो वो नीले रंग की वैगन आर छोड़ दी, वरना लगा उस वैगन आर को अब भी चलाते। मुझे बताइए इतना बड़ा धोखा किसने भारत के सियासत में किया लोगों के साथ, किसने भारत की राजनीति में इतना बड़ा धोखा किया लोगों के साथ? आपने जनता का नहीं, आपने पूरे भारत का विश्वास तोड़ा है, क्योंकि अगर आप पन्नू से पैसे लेते हैं आप पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। केजरीवाल जी ये दिल्ली का विषय नहीं है, भारत के 140 करोड़ लोगों का विषय है। आपने 140 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात किया है। मैं आपको बताऊं 130 करोड़ रुपए लिए 140 करोड़ जिंदगियों के बाबत, यू हैव मेस विद 140 करोड़ पीपल इफ दिस एलिगेशंस आर ट्रू, आपके पास जवाब है?
एक बात ये भी है, देखिए ये तो ठीक है हमारे घुंगरू सेठ के पास कोई जवाब नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन घुंगरू सेठ के लोग और मीडिया में बैठे हुए उनके चाटुकार, उनसे जिन्होंने लाभ उठाया है, लाभार्थी वर्ग, मीडिया का जो लाभार्थी वर्ग है, आपको पता है ना कि मीडिया को करप्ट करने में जितना काम केजरीवाल ने किया है, जो मानदंड स्थापित किए हैं, जो टेम्पलेट्स बनाई हैं, वो आज तक किसी ने नहीं किया, मेरे ख्याल से विश्व के इतिहास में नहीं किया किसी ने, तो वो उन्होंने किया है। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई इससे तो मोदी को बहुत नुकसान होगा, कितना होगा?
मैं आपको बताऊं इनका एक, आपको कारनामा बताता हूँ। इन्होंने 60 लाख रुपए का एक वो पराली को गलाने वाला कुछ कंपाउंड बनाया, 60 लाख रुपए का कंपाउंड बनाया और उसका करोड़ों रुपए का ऐड किया, 495 करोड़ इनका एडवर्टाइजिंग स्पेंड रहा, 495 करोड़ लगभग 500 करोड़। और आज की परिस्थिति ये है, ये जो पन्नू वाला वीडियो है आप देखोगे काफी सारे मेन स्ट्रीम चैनलों से गायब है, वो चला ही नहीं रहे इसको, वो तो डिजिटल मीडिया नहीं होता आज तो लोगों को पता भी नहीं लगता ऐसी कोई खबर भी आई है, ऐसी कोई चीज भी आई है, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है और इस चीज को वो छू भी नहीं रहे। आप बताइए कि अगर ये दोहरे मापदंड नहीं है तो और क्या है, आप बताइए अगर ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है। इतनी बड़ी खबर है और आप इसको छुड़वा रहे हैं। आप देखिए 495 करोड़ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो दिख रहा है, कहीं ना कहीं तो आ रहा है ना इम्पैक्ट इसका, 495 करोड़ बहुत बड़ा पैसा होता है। और यही चीज आप बताइए हम जैसे लोग बात कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे मीडिया में ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी, ये इसको क्यों गायब कर रहे हैं और मोदी को क्या नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना कि केजरीवाल को अरेस्ट करोगे तो दिल्ली में करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाएंगे, दिल्ली में अस्त व्यस्त हो जाएगा, दिल्ली में किसी को पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग सड़कों पे होंगे। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब ट्रैफिक चल रहा है, सब कुछ फिट चल रहा है, कोई सड़क पे नहीं है। और जिस दिन केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं उस दिन रात को यहाँ पटाखे छूटे, लोगों ने मिठाइयां बांटी है, कहता अच्छा हुआ अरेस्ट हुआ। मुझे बताइए कितने कार्यकर्ता आपको आम आदमी पार्टी के सड़कों पे नजर आ रहे हैं। अब ये जो पन्नू का इंसिडेंट हुआ इसके बाद भी कोई पेट्रियोटिक भारतीय जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, मैं नहीं कहता हर कोई आम आदमी पार्टी का करप्ट है, बहुत पेट्रियट होंगे आम आदमी पार्टी में भी, क्या वो पेट्रियोटिक कार्यकर्ता, क्या उसका दिल, क्या उसका जमीर आज उसको इजाजत देगा उस केजरीवाल के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद करो जो जिसके लिए जो पन्नू से 131 करोड़ रुपए लेके बैठा है। बताइए कौन हिंदुस्तानी, कौन पेट्रियोटिक हिंदुस्तानी आज करेगा। मैं आपको कल परसों की बात बताऊं, मान साहब आए थे पंजाब से, कह रहे जी मुझे दिल्ली में प्रोटेस्ट करना, पता नहीं क्या हुआ वापस लौट गए पंजाब, वहां जाके कुछ बयान वयान दे, कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट नहीं किया। यहां तो सुनने में आ रहा सर मान साहब भी अपने हिसाब किताब देख रहे हैं, उनके एमएलए का भी प्रेशर पड़ रहा है, उन पे कह रहा है सर जी के साथ सर क्यों हमें भी हमारी भी दुकान बंद कराओगे, देखो क्या करना है। यहाँ मेरे को लग रहा है अगर सर जी कुछ टाइम जेल में रहे तो जो उद्धव ठाकरे वाला हाल हुआ, जो एनसीपी वाला हाल हुआ, तो मुझे वो हाल यहाँ होता नजर आ रहा है कि पार्टी ही ना चले जाए, शासन प्रशासन चला जाएगा, पार्टी ना चली जाए। पीछे सौरभ भारद्वाज जी को कोर्ट ने फटकार लगाई, कहता आप बिहेव करिए नहीं तो 2 मिनट नहीं लगते आपको जेल डालने में। अभी आदिशी मरलिना जी जो भी कहती है करती रहे, कहती
नहीं,
रहे।
नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे नाम नहीं लेते, इतनी अवज्ञा से और इतनी डिसरिस्पेक्ट से आदिशी जी का नाम नहीं लेते, उनका नाम है आदिशी मार ले ना।
और सर मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, अब ये मार लेना तो मैंने नाम भी नहीं सुना पहले कभी। अब जितना हमें जितना हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे जितना आता उतना ही बोलते हैं, औकात ही उतनी है, तो अब ये पता नहीं नाम भी कहां से, किसी ने बोला
अब था ये भी पता नहीं ये इनविटेशन है कि क्या है।
नहीं किसी ने मुझे बोला था, मैंने इसका अध्ययन किया था, मैंने कहा ये नाम बड़ा यार सुना नहीं भारत में, कहते हैं इसमें मार्क्स और लेनिन का मिक्सचर है, ये कार्ल मार्क्स और लेनिन का, मार और लेनिन का दोनों का मिक्सचर करके, वैसे तो आची सिंह है ये पर लिखती है मार लेना व्हाटएवर, तो ये वाली चीज है। खैर वो तो उनका व्यक्तिगत विषय है, हम उसमें ज्यादा नहीं बोलते, उनकी मर्जी है जो मर्जी करे। पर मैं एक चीज जानता हूँ संजय सर, ये नाटक ये आडंबर चलने वाला नहीं है, दिल्ली में लोगों की आंखें खुल गई है। आज इतना बड़ा प्रकरण हुआ है भारत की राजनीति में पूरे 75 सालों बाद। मुझे बताइए अगर ये चीज सच निकलती है, अभी तो एलिगेशन है, जांच होगी पता लगेगा, अगर ये चीज सच निकलती तो जीलानी और केजरीवाल में कितना फर्क मानते हैं सर आप? जीलानी भी तो पाकिस्तान के पैसे लेता था, ये खालिस्तान के पैसे लेता हुआ या पाकिस्तान के पैसे लेता हुआ या खालिस्तान, तो
जीलानी का प्रूव नहीं हुआ, इसका प्रूव हो जाएगा। ये फर्क है ना, बताया मैंने आपको जीलानी का जो कुछ भी था वो एजेंसीज को पता तो था लेकिन वो कभी प्रूव नहीं किया उन्होंने, इसका तो पन्नू ने ही प्रूव कर दिया। कम से कम यार जीलानी के जो जीलानी ने जो अपने सहयोगी चुने थे पाकिस्तान वाले वो कम से कम इतने रिलायबल तो थे जो वो जीलानी के खिलाफ तो नहीं बोलते थे। अब इसने तो ऐसा गधा चूज किया है खोता, वैसे भी इनको कईयों को खालिस्तानियों को खोतेस्तानी बोलते, तो ऐसा खोता चूज किया है कि उसने तो खड़े होकर बयान दे दिया, बोलिए तो वो भी कितना अमाउंट है बताइए, घुंगरू सेठ के लिए 130 करोड़ क्या है?
सर पर एक बात बताइए ना, उसके भी तो बॉस पूछ रहे होंगे ना, भाई पैसे कहाँ डुबा दिए? कहता सर मैं एक वीडियो जारी करूंगा, मैं बता दूंगा कब कब किसका, वो बता रहा है सर 2014 से लेके 22 तक आपने 130 करोड़ लिए रुपए लिए हमसे, वो तो कह रहा 16.6 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर तुमने लिए हमसे और तुमने हमारा कोई काम नहीं किया। तो अगर आप ये चीज वो खुलेआम बता रहा, ये तो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि तो फॉरेन फंडिंग की बातें हो रही है, तो देश की सुरक्षा को लेके डायरेक्ट छेड़छाड़ का विषय है। और आप कहाँ के चीफ मिनिस्टर, आप तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली में क्या, दिल्ली में कैबिनेट है, दिल्ली में प्रधानमंत्री का ऑफिस है, दिल्ली में रक्षा मंत्री का ऑफिस है, दिल्ली में पार्लियामेंट है, दिल्ली में आर्मी भवन है, सेना भवन है, हर चीज दिल्ली में। अगर दिल्ली की सुरक्षा को लेके इतनी बड़ी सेंध सामने आई है, तो क्या आपको लगता है नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है संजय सर? इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच कहाँ होगा है? इससे बड़ा, बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, और इसका इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल फौरन से बेहतर होना चाहिए। और ये ईडी वालों को भी हमें जरा बताना चाहिए, भाई ये कैसे कैसे लोग कागज पत्र आके निकल रहे हैं आपके दफ्तर से, भाई आपका नाम खराब हो रहा है, आप देखिए इनको, इनका तो नाम खराब है ही, आपका नाम साथ में और खराब करेंगे। और इन्होंने क्या बोला था केजरीवाल जी ने, केजरीवाल ने बोला मोदी इज अ साइकोफैट, मोदी मुझसे डरता है, हाँ मैं अनार्किस्ट हूँ, हाँ मैं अनार्किस्ट हूँ। और सबसे अच्छी तो मुझे इस केजरीवाल जी की एक बात लगती थी, कहता था कि मोदी को मुझसे डर है। तो मैंने एक टीवी डिबेट में पूछा, मैंने कहा कैसे डर है? कह रहा हम मोदी जी को हराएंगे। मैंने कहा यार तुम्हारा एक लोकसभा का सांसद नहीं है, उनके पास 330 है, मतलब तुम्हारे पास एक सांसद नहीं, तुम 303 वाले को डरा दोगे? 303 वाला जीरो से डरता है। मैं कहा यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस जबरदस्त है भाई, तुम तो दूसरी दुनिया में रहते हो, तुम तो अलग ही प्लेनेट में रहते हो, एक सांसद तुम्हारे पास है और 303 वाले को डराते हो। ये तो कहानी है सर। आप बताइए क्या ये ईडी के गिरफ्तारी के अंदर रहते हुए क्या वो सीएमओ चला सकते हैं वहां से? मेरे हिसाब से तो नहीं चला सकते, ये लीगल तो है नहीं। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसका कॉग्निसेंस नहीं लेना चाहिए? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे चार्ज नहीं लगने चाहिए? आप कैसे सीएमओ चला सकते हो व्हेन यू आर अरेस्टेड? ये प्रावधान तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है, तो ये कैसे अलाउ हो रहा है? मतलब आप अपनी सत्ता पे, अपनी पार्टी पे पकड़ रखने के लिए आप कह रहे हो कि मैं कहीं से भी चला लूंगा, मतलब मैं रिजाइन नहीं करूंगा। ये तो ही वाली बात होगी, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। अब दिक्कत ये कि अब रिजाइन करके जो बैठेगा फिर उसको भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए अगर केजरीवाल जी रिजाइन करते हो, सुनीता जी बैठती है, चलिए कोई बात नहीं, केजरीवाल जी जवाब तो देंगे, फिर वो भी तो जांच के घेरे में आ जाएंगी ना, क्योंकि वो नई सीएम है, तो उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे, उनसे जेल बोर्ड के विषय में पूछा जाएगा, उनपे पता नहीं और कौन कौन से स्कैम है जिनके बारे में पूछा जाएगा। अब कोई तो बात है ना संजय सर, मनीष सिसोदिया को एक साल हो गया जेल में, उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, उनके घर में काफी दिक्कतें, तब भी उनको बेल नहीं मिल रही। पीछे सत्येंद्र जैन जी को पेरोल मिला था, उनकी तबीयत खराब थी, अभी 10-11 दिन पहले की बात है, उन्हें बोला नहीं जी अब वहां वापस से रहा जाओ, अब इसके आगे आपका पेरोल एक्सटेंड नहीं हो सकता। अगर बेल नहीं मिल रही, पेरोल नहीं मिला, संजय सिंह को बेल मिला क्या? संजय सिंह को बेल नहीं मिला। अमानतुल्ला खान उसको बेल मिला क्या? नहीं मिला। तो ये क्या विडंबना है, जब इंडिया का ज्यूरिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन बेल नॉट जेल, इनमें से किसी को बेल नहीं मिल रहा, व्हाई एनी ऑफ देम इज नॉट गेटिंग द बेल? क्यों? तो क्या इनके कहने अकॉर्डिंग टू देम, क्या भारत की न्याय प्रणाली भ्रष्ट है? और आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने बड़ी हवा उड़ाई थी, जब इन्हें रोज एवेन्यू कोर्ट से थोड़ा रेस्पाइट मिला था, वो जो ये समनों पे नहीं आए थे उसके लिए इनको रेस्पाइट मिला था, कोई बात नहीं हम आपको ईडी के लिए अरेस्ट नहीं करेंगे, पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने हवा उड़ा दी, बेल मिल गया, बेल मिल गया, बेल मिल गया, और कुछ यहाँ मीडिया के चैनलों पे भी चल गया, केजरीवाल को बेल, केजरीवाल को बेल। फिर हमें आके बोलना भैया ये जो इन्हें 7-5 सबने जारी हुई उस पे नहीं गए और उस पे कार्रवाई न, उसके रिलीफ में बेल मिला है, मेन केसों पे बेल नहीं मिला है। और संजय सर आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने बोला था, याद है आपको, मैं कहा 8वां समन बहुत डेंजर है भाई, 8 शनि का अंक है, बोला था हमने।
लेकिन माने मेरे को एक और समाचार मिला है सर, मेरे क्या है रिलायबल सोर्स बहुत है जी। और वो रिलायबल सोर्स से ये समाचार मिला है कि अंत समय में, मतलब अंत समय का मतलब वो बिल्कुल अंत वाला नहीं, वो अंत समय में यानी गिरफ्तार होने के 1-2 दिन पहले कुंगरू सेठ ने ऑफर किया था पाकिस्तान को कि देखो बेटा तुम हमको बचा लो और तुम जो है वो यूएन में रेजोल्यूशन चला दो और ये कहो कि भाई केजरीवाल जैसे के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम तुम्हारा जो है ना वो अफगानिस्तान से तुम्हारा पैचअप करा देंगे। तो ये मेरी बात समझ में तो नहीं आई कि कुंगरू सेठ के हाथ इतने लंबे हैं लेकिन हो सकता है आप समझ जाएं।
सर ये देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली बात, जिस दिन ये अरेस्ट हुए उस दिन सुबह अभिषेक मनु सिंघवी जी हाईकोर्ट गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी जी हाईकोर्ट गए तो उन्होंने कहा जी ऐसे से अरेस्ट से हमें, हम तो जाने को तैयार है पर हम अरेस्ट हो सकते हैं, तो हमें आप एक इंडेमनिटी दीजिए, एंटिसिपेटरी बेल दीजिए, एश्योरेंस दीजिए हमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो माननीय जज साहब ने ईडी से पूछा, बोले भाई आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है, जबकि ये कह रहे थे कोई प्रूफ नहीं है, अभिषेक कहते कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तब ईडी को पूछा भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या है तुम बताओ, तो ईडी ने बोला था साहब हम यहाँ नहीं बता सकते आपको, आपके चैम्बर में बुलाइए हम वहां आपको फाइल दिखा देंगे। तो जज साहब ने कहा आप भाई चैम्बर में आओ। तो ईडी ने जब फाइल दिखाई, जज साहब ने फाइल देखी तो जज साहब ने आके बोला भाई कोई एंटिसिपेटरी बेल नहीं, कोई इंडेमनिटी नहीं दे सकते, कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते, आप गिरफ्तार नहीं होंगे। तो आप सोचिए जज साहब ने 15-20 मिनट में क्या क्या नहीं देखा होगा कि आके उन्होंने स्क्वेयरली मना कर लिया, जब हमारा सिस्टम इज बेस्ड ऑन बेल नॉट जेल। पहली बात, अब तब मैं समझ गया था कि भाई अब ये एंड गेम शुरू हो गया, अब इनका गिरफ्तारी ऑलमोस्ट तय है। हाँ, ये पाकिस्तान से कहां से बात कर सकते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का देखिए अगेन K2 डेस्क, पन्नू K2 और वहां के थ्रू ये कुछ उस लूप से ये वहां जा सकते, डायरेक्ट तो वहां नहीं जा सकते। और कहीं ना कहीं अगर पन्नू को पैसा मिलता, पन्नू को तो ISI से पैसा मिलता ही मिलता, ये तो कोई उसमें तो कोई डाउट है नहीं, तो यहाँ पाकिस्तान से तार तो जुड़ते नजर आ रहे हैं ना, पन्नू K2 ISI ये सारे तार तो जुड़ते आ रहे हैं। तो अगर ये तार जुड़ रहे हैं ये तो बहुत चिंता का विषय है। और अगर ऐसी कुछ चीज हुई है तो उन्हें बोला यार तुम इंटरव्यून कर लो। आप देखिए जर्मनी ने भी बोला था, जर्मनी ने कुछ केजरीवाल जी को लेके बोला था और तुरंत उनके एम्बेसडर को बुलाया गया और 3-2-11 कर दिएगा, टाइट कर दिएगा उससे, मतलब औकात में रहो वरना जूता भी रखते हैं, वरना जूता भी रखते हैं हम, आती नहीं है जूता भी रखते, एकदम औकात में आके गया। वहां जर्मनी से भी कुछ दिन पहले, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक आतंकवादी, एक खालिस्तानी बहुत खतरनाक आतंकवादी को पकड़ा गया था। तो ये आप देखिए, अगर आप कुमार विश्वास का एक वीडियो देखें, कुमार विश्वास ने एक दिन कहा था, कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल मुझे कहता है कि भाई मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूंगा। मैंने कहा यार अरविंद तुम्हें ना ये दे विल नॉट टेक अ नॉन टर्बन पर्सन। कहता कोई बात नहीं, कहता वो फुलका कैंप और मान कैंप में लड़ाई करवा देंगे और फिर मैं कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बन के आ जाऊंगा और मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। उन्होंने कहा यार तुम्हें मानेंगे नहीं, कह रहा नहीं लड़ाई करवा देंगे तो मान जाएंगे, कह रहा नहीं माने तो, कहता कोई बात नहीं मैं, कहता कोई बात नहीं मैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशन का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तब। ये कुमार विश्वास जी का वीडियो है अब भी सोशल मीडिया पर, जहां उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं तब मैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशन का प्रधानमंत्री बनूंगा, ये कुमार विश्वास ने कहा है, इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस। अगर ऐसी चीजें हैं तो अगर आप इसको, अगर इसमें आप जुड़े,
आप याद कीजिए कि देखिए इनके जो है केजरीवाल के पाकिस्तान के कोऑपरेशन के पुराने किस्से हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो इन्होंने प्रूफ मांगा था, और आपको याद हो तो कुमार विश्वास ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि किस तरह से उसने अपोज किया था, ये कहा था कि भाई इस तरह की बकवास मत करो, ये तुरंत पाकिस्तान वाले इसको चलाएंगे। लेकिन बात तो आज ये हो रही है कि साहब पाकिस्तान की ऐसी तैसी अफगानिस्तान कर रहा है, आपको पता ही है,
बिल्कुल
कम से कम 100-150 मारे जा चुके, उसकी भी बात थोड़ा सा कर लीजिए कि क्या स्थिति है वहां पे
सर।
और गुरु सेठ जो है वो कह रहे हैं कि साहब देखिए हम पाकिस्तान को बचा सकते, क्या है मतलब, ऐसा इनका कौन सा डीप स्टेट का कनेक्शन है जिससे ये सब ये कर सकते हैं।
सर देखिए अगर डीप स्टेट की बात करेंगे तो काफी लोगों का ये मानना है, जो सेठ साहब है उनको कहीं ना कहीं एक राइट टाइम पे CIA ने इम्प्लांट करने की कोशिश की थी, कि काफी लोगों का मानना ऐसा है कि हाइपोथेसिस है ऐसा हुआ था और ये कहीं ना कहीं उनका क्रिएशन है। दे वर वेटिंग फॉर अ पर्सन लाइक दिस, जिसको राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया फॉर देयर इंटरेस्ट, जो वो हर कंट्री में करते रहते, कोई नई बात नहीं उनके लिए। दूसरी बात ये है कि अब ये जो पैसे का लेन देन हुआ है, अब हमें क्या पता कि केवल पन्नू से हुआ है, हो सकता तो और भी लोगों से हुआ, ऐसे और भी तो खिलाड़ी है मार्केट में। अब देखिए बॉलीवुड का एंगल है, बैटिंग का एंगल है, क्रिकेट का एंगल है, दुबई का एंगल है, साइप्रस का एंगल है, सिंगापुर का एंगल है। आप याद करिए संजय सर, इन्हें मेयर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना था सिंगापुर, MEA ने मना किया था, भाई तुम तो मेयर तो हो नहीं, तुम मेयर की कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर क्यों जाते हो। अगर आप देखें इंडिया में सेकेंड मोस्ट, वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड के बाद सेकंड मोस्ट लिबरल बैंकिंग या इंडिया में मोस्ट लिबरल बैंकिंग अभी सिंगापुर में, जहाँ कोई सवाल नहीं पूछा जाता, $2,50,000 तक भी आप अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में डालो या निकालो पर डे, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। तो ये सिंगापुर क्या करने जा रहे थे, किससे मिलने जा रहे थे, क्या ये मसला केवल पन्नू का ही है या इसमें और भी खिलाड़ी है? तो अगर और भी खिलाड़ी है तो कहीं ना कहीं डीप स्टेट और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ISI के तार जुड़ेंगे। तो शायद उन कनेक्शनों को, जिनका अभी खुलासा नहीं हुआ है, शायद कभी होगा नहीं होगा नहीं पता, अगर उन कनेक्शनों का खुलासा होगा तो उसके माध्यम से ऐसी बात कर सकते हैं कि अगर आप ये रेजोल्यूशन वगैरह चला तो मुझे बचा लो, मैं इन द रिटर्न आपका ये करा सकता हूँ। और पाकिस्तान तो आजकल ठुकरा अफगानियों से, उन्हें तो रोज उन्हें तो तितर बटेरों की तरह पठान मार रहे हैं, तो वो बेचारे वैसे कहते हैं यार कोई भी कुछ भी करा लो, हाय अल्लाह बचा लो, अब पठानों ने बहुत मार दिया हमें, तो उनकी तो हालत खराब। आप देखिए ना रोज कितने मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तानी आर्मी जितनी नपुंसक और नालायक है वो तो आप देख ही रहे हैं। और मैंने आपको उस दिन भी बोला था, मैं कहा जिस दिन अगर पता लग गया कि इनके पास परमाणु बम नहीं है, जो कि नहीं है, मैं कहा इनको तो अपने जाद ही ठोकेंगे। याद है आपको सर लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि तहरीके तालिबान और अफगानी तालिबान ही इनको ठोक देंगे जिस दिन उन्हें कन्फर्म किया इनके पास कोई बड़ा हथियार नहीं है। और आप लगभग बताइए इनके पास कोई बड़ा हथियार नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जो तहरीके तालिबान के जो ये सुसाइड बॉम्बर्स हैं और अफगानी तालिबान के, ये तो अभी शांत बैठे थे, इन सबको एक्टिवेट किया गया। कुछ दिनों में आप देखेंगे कोई यहाँ फटा, कोई वहां फटा, कोई यहाँ फटा, कोई यहाँ फटा, रोज दो चार फटेंगे और साथ में 100-200 को ऊपर लेके जाएंगे। जन्नत एक्सप्रेस में ओवर रिजर्वेशन चल रही है आजकल, रिजर्वेशन की कमी हो रही है, मतलब कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, आजकल जनरल डब्बे में खड़ा होके जाना पड़ रहा है, RAC भी नहीं मिल रहा, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन भी नहीं मिल रहा, वेट लिस्ट भी जारी हो गई, बंद हो गई। और आप जानते हैं जन्नत एक्सप्रेस में ना सर इंजन में पंख लगे हैं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाती है ना इंजन, जिसमें फिर पंख लगे इंजन में, तो जन्नत एक्सप्रेस में ओवर बुकिंग चल रही है सर आजकल, तो अब किस किस को ऊपर जाए।
और आइए अब हम दर्शकों के